ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। शांति और मानवाधिकार के पक्ष में सबके साथ मिलकर काम करने के लिए सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। आज एक ही दिन में काठमांडू घाटी में 1638 सहित देशभर में कोरोना के 2722 नए मामले आए सामने और 3307 लोग हुए संक्रमण मुक्त। कोरोना से संक्रमित 11 लोगों की हुई मौत और कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सपत्नी हुए संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, सरकार सबके साथ मिलकर शांति और मानवाधिकार के पक्ष में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मानवाधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपाल की घोषणा सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सुशासन कायम करने और विकास के माध्यम से जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के विषय में सरकार सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सभा को संबोधित करते हुए नेकपा के दूसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि समाज में मौजूद सभी तरह के विभेदों, हिंसात्मक घटनाओं, भ्रष्टाचार और दंडहीनता का अंत होने के बाद ही मानवाधिकार का अनुभव हो सकेगा। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि जब तक पूर्ण एवं सारभूत समानता हासिल नहीं हो जाती, तब तक महिला सशक्तिकरण का अभियान जारी रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं महासभा अंतर्गत महिला संबंधी चौथे विश्व सम्मेलन के 25वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को काठमांडू से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लैंगिक विभेद के अवशेषों को निर्मूल करने और क्रियान्वयन में रही कमजोरियों को सुधारने को लेकर नेपाल प्रतिबद्ध है। आज देशभर में 2722 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 1638 मामले सिर्फ काठमांडू घाटी के हैं। इसके अलावा घाटी से बाहर मोरंग, मकवानपुर, बांके, रूपंदेही और सुरखेत में भी संक्रमण की दर काफी उच्च है। जहां एक ओर काठमांडू में 1062, भक्तपुर में 196 और ललितपुर में 162 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर घाटी से बाहर मोरंग में 150, सुरखेत में 122, रूपंदेही में 92, बांके में 70 और मकवानपुर में 55 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं देशभर में आज 3307 लोग कोरोना मुक्त भी हुए हैं। इसके साथ ही देशभर में अब तक 60,696 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बहरहाल देश में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 73.6% है। इसके अलावा आज ही कोरोना संक्रमित 4 महिलाओं और 7 पुरुषों की मौत हो गई। इसे मिलाकर कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की संख्या देशभर में 520 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब तक नेपाल में किसी भी निजी कंपनी को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मंत्रालय की आज की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के बाद नेपाल सरकार खुद नेपाल में लाने की पहल करेगी। साथ ही डॉ गौतम ने दशहरा लगात पर्वों को मनाने के लिए अपने गांव और विभिन्न जगहों में जाने वाले लोगों से आग्रह किया कि इस दौरान वे अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, खासतौर पर वे जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य दीर्घकालीन रोग से पीड़ित हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों की प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर व्यावसायिक संदेश।
सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
*1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति ने महामारी के कारण विकलांग महिलाओं को जनजीवन सहज तरीके से बिताने में हो रही समस्या का समाधान करने का तीनों तहों की सरकार को निर्देश किया है। सिंह दरबार स्थित समिति के कार्यालय में आज हुई बैठक ने विकलांग महिलाओं की समस्या का नीतिगत समाधान करने का तीनों तहों की सरकारों को निर्देश किया। प्रधानमंत्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुलपति केपी शर्मा ओली ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से आगामी दिनों में और अधिक अनुसंधानमुखी और व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा की आज हुई बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय को देश के मौलिक ज्ञान, चेतना, सहिष्णुता और सभ्यता को और अधिक उजागर करना होगा। इस मौके पर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री एवं त्रिवि के सह कुलपति गिरिराज मणि पोखरेल ने कहा है कि वैकल्पिक शिक्षण विधि का उपयोग कर शैक्षिक सत्र को कायम करने की जरूरत है। त्रिवि के उपकुलपति प्राध्यापक डॉ धर्मकांत बांसकुटा ने बताया कि विश्वविद्यालय को प्रविधि मैत्री बनाने के लिए सूचना प्रविधि नव प्रवर्तन केन्द्र का निर्माण किया गया है, साथ ही निवृत्ति भरण का भी दीर्घकालीन समाधान ढूंढा गया है। इस अवसर पर त्रिवि के रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉ पेशल दाहाल ने आर्थिक वर्ष 2077-78 के लिए 21,86,45,22,000 रूपये का बजट प्रस्तुत किया था। इस बजट को पास किए जाने की जानकारी शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डॉ शिवलाल भूसाल ने दी। सुप्रीम कोर्ट में नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम को राष्ट्रीय सभा का सदस्य मनोनीत करने के निर्णय को बदर करने और मंत्री न बनाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण आज भी मुलतवी कर दी गई। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमवांग ने कहा कि बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों को दशहरा से पूर्व ही आवाजाही के लिए सहज बनाने की तैयारी हो रही है। आज प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समिति की वर्चुअल बैठक में मंत्री नेमवांग ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल बारिश के कारण तकरीबन 250 स्थानों की सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें फिर से सुचारू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। प्रदेश नंबर 5 की स्थायी राजधानी और नामकरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री कुलप्रसाद किसी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश नंबर 5 प्रदेश सभा की आज की बैठक में प्रदेश सरकार गठन होने के करीब 2.5 सालों के बाद प्रदेश की स्थायी राजधानी और नामकरण से जुड़ा औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने बताया कि दांग की राप्ती नदी किनार के मैदानी भाग देवखुरी घाटी क्षेत्र को स्थायी राजधानी और प्रदेश का नाम लुम्बिनी रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसी आश्विन 19 के दोपहर 12 बजे होने वाली प्रदेश सभा की बैठक से प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श शुरू होगा। ये जानकारी सभामुख पूर्ण बहादुर खर्ती ने दी। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि संविधान का संशोधन होने के बाद ही जनता के संघर्षों से प्राप्त उपलब्धियां संस्थागत होंगी। आज सप्तरी के बोधि बरसाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव ने कहा कि संविधान में मौजूद त्रुटियों का संशोधन कर प्राप्त उपलब्धियों को तत्काल संस्थागत किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कुवैत के अमीर शेख सवाह अल अहमद अल जावेर अल सवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री ओली ने क्रमशः कुवैत के अमीर और प्रधानमंत्री को अलग अलग शोक संदेश भेजे। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद दोनों को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। आज ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब अगले 14 दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया को क्वारंटीन रहना होगा। अगले एक हफ्ते के बाद उनका फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया उसकी अमेरिका में काफी आलोचना की जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त तक मास्क नहीं पहना था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि लंबे वक्त के बाद उन्होंने कई जगह मास्क पहना था। अमेरिका इस वक्त कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में नंबर एक पर है, जहां 2,07,000 से अधिक कोरोना के मामले हैं, जबकि 2,00,000 से अधिक की मौत हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,46,21,900 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,57,73,000 ठीक हो चुके हैं। वहीं 10,29,700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 75,07,524 लोग संक्रमित हैं। वहीं 2,12,912 लोगों की मौत हो चुकी है और 47,50,176 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह भारत दूसरे नंबर पर है, जहां 64,38,968 लोग संक्रमित हैं और 1,00,323 लोगों की मौत हो चुकी है और 53,00,000 93,737 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील में 48,49,229 लोग संक्रमित हैं और 144,767 लोगों की मौत हो चुकी है और 42,12,772 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह रूस में 11,94,643 लोग संक्रमित हैं और 21,077 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 9,70,296 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। शांति और मानवाधिकार के पक्ष में सबके साथ मिलकर काम करने के लिए सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। आज एक ही दिन में काठमांडू घाटी में 1638 सहित देशभर में कोरोना के 2722 नए मामले आए सामने और 3307 लोग हुए संक्रमण मुक्त। कोरोना से संक्रमित 11 लोगों की हुई मौत और कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सपत्नी हुए संक्रमित। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभ रात्रि।